तो आप सभी अभी शांति से बैठकर इस प्रवचन का श्रवण कीजिए। जो लोग अभी भी खड़े हैं, विनती है कि आगे आ जाएं और बैठ जाएं ताकि प्रवचन को आराम से सुन सकें। हरे
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama. Krishna, 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 श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् प्रपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रवचन हिंदी दिता इतने मस्त लोग कोंकणी कळना हिंदी सगळ्यांक कळता त्यामुळे ते प्रवचन हिंदी दिता। थोड़े ही समय पहले हमने यहाँ बहुत सुंदर बच्चों के द्वारा प्रस्तुत एक नाट्य लीला देखी भगवान कृष्ण के लीलाओं के संदर्भ में। और ये देखते समय हमारे मन में एक विचार आया और वो ये है कि ये कृष्ण भक्ति का पथ कितना आनंद से भरा हुआ है, आनंदमय चिन्मय ये भक्ति का मार्ग है और इस आनंदमय मार्ग को छोड़कर दुनिया में अनेक लोग इस आनंद के पीछे भाग रहे हैं। वो नहीं जानते हैं कि सच्चा आनंद यहीं पे है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं। भगवान कृष्ण अपने धाम से प्रकट होते हैं, हमारे जगत में प्रकट होके अवतार लेके सुंदर सुंदर लीला प्रकट करके हमारे हृदय को जीत लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम ही ऐसा है सर्व आकर्षक। कृषि पूर्वाचक शब्द नश्च निर्वृति वाचक। कृष और ण ये दो जो अक्षर हैं, इनको जब मिलाया जाता है तो ये परम आकर्षक सर्व आकर्षक भगवान को संबोधित करता है, आध्यात्मिक आनंद और सबको आकर्षित करने वाला। तो कृष्ण शब्द का अर्थ ही ऐसे है कि जो हमें उनके सुंदर गुणों से, उनके पवित्र नामों से, उनके मधुर लीलाओं से हमारा मन जीत लेते हैं। यह संसार में हमारे मन जीतने का प्रयास बहुत लोग करते हैं, लोग उपन्यास लिखते हैं, पत्रिकाएं लिखते हैं, समाचार पत्र लिखते हैं, सिनेमा टेलीविजन आदि ऐसे कितने सारे मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं हम सबका मन हर लेने के लिए, परंतु ये सब मिथ्या है। भगवद गीता के अनुसार ये संसार का जो तथाकथित सुख है ये सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख क्या है इसको दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके धाम से कृपा करके यहाँ धरातल के ऊपर प्रकट होके ऐसे सुंदर लीलाएं प्रस्तुत करते हैं ताकि हमारा मन उनके प्रति आकर्षित हो जाए, हमारा मन संसार से हटाके भगवान उनके चरणों में केंद्रित करवाना चाहते हैं, इसलिए भगवान आते हैं। अन्यथा भगवान को यहाँ अवतीर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का प्राकट्य हमारे प्राकट्य हमारे जन्म की तरह नहीं होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मनेति मामेति सो अर्जुना। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य हैं, अलौकिक हैं, और जो इनको भली भांति तत्वतः समझ लेता है उसे इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, परंतु वो मेरे पास लौट के आता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है, अनंत शाश्वत जीवन को प्राप्त करता है, मेरे सानिध्य को प्राप्त करता है मेरे धाम में। तो भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः समझने का लाभ कितना है, भगवान को यदि हम समझ पाएंगे तो फिर हमेशा के लिए हमारे समस्त दुखों का निवारण हम कर पाएंगे। ये एक राम बाण उपाय है जिसके द्वारा हमारे सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है, केवल एक चीज से, भगवान को जानने से। हो सकता है हम में से कई सोचें कि ऐसे कैसे हो सकता है, केवल भगवान को जानने से हमारी सारी समस्याएं कैसे समाप्त हो सकती है। इसका उत्तर ये है कि हमारी समस्त समस्याएं इसलिए आती हैं कि हमारा ये भौतिक देह है। जब तक ये भौतिक देह रहेगा जब तक हमें यह बारंबार संसार में जन्म लेना पड़ेगा तब तक हमारी समस्याएं चलती रहेंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि ज्ञान का सर्वप्रथम लक्षण ये है कि हम ये जान लें कि जन्म मृत्यु बीमारी और बुढ़ापा, ये चार चीजें जब तक हैं हम सुखी नहीं हो सकते। तो विज्ञान अर्थव्यवस्था आदि में बहुत प्रगति हुई है, परंतु हम देख रहे हैं कि लोग सुखी नहीं हैं, बल्कि पूर्व कालों की तुलना में आजकल के लोग बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, उनका जीवन तनावग्रस्त रहता है, लोगों के बीच में संबंध प्रेम का नहीं रहा है आजकल। इसलिए भगवान को भूलने से आज हमारे समाज में, हमारे देश में भी और सारे विश्व भर में ये समस्या है। तो इन सारे समस्याओं का हल तब हो सकता है जब हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट जाएंगे, और वो तब संभव है जबकि हम भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह से जान जाएंगे। ये है भगवान श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने का उद्देश्य। कोई प्रश्न ये कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हम कैसे जान सकते हैं? इसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण देते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चाष्टि तत्पतः ततो माम तत्पतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल मेरी भक्ति करने से तुम मुझे जान पाओगे, और ऐसे प्रेम और भक्ति से तुम मेरे धाम को प्राप्त कर पाओगे। इस दुख में जन्म मृत्यु के संसार को त्याग कर तुम मेरे धाम में, वैकुंठ जगत में तुम पहुंच पाओगे। ये हमारे जीवन की चरम सफलता है, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसा करने के लिए ही भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं, परंतु हम इस बात को नहीं जानते हैं, हम भूल चुके हैं भगवान को, इसलिए हम अन्य अनेक चीजों में, हम भगवान के सिवाय अन्य चीजों में हम भक्ति या सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वैसे भगवान जब यहाँ आते हैं वो हमारे प्रति प्रेम रखते हैं, इसलिए वो आते हैं। हम भगवान के अंश हैं, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जगत में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कीड़े हो, पशु हो, पक्षी हो, वो सब मेरे अंश मात्र हैं, मैं पूर्ण हूँ और ये सारे प्राणी मेरे अंश हैं, परंतु मुझ भगवान को भूलकर मेरे ये सारे बच्चे अभी भौतिक संसार में संघर्ष कर रहे हैं। हमें केवल हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके सच्चे आनंद की प्राप्ति करना है, इसलिए हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। आपने अकबर और बीरबल का नाम सुना होगा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि अरे बीरबल, तुम्हारे धर्म ग्रंथ भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं जगत में, और भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं, तो क्या तुम्हारे भगवान इतने सक्षम नहीं है, इतने समर्थ नहीं है कि उनके धाम में बैठ के ही ये सारे चीजों को संपन्न करें? क्या उनको यह अवतार लेकर ही सब करना पड़ता है? क्या वो इतने शक्तिशाली नहीं है कि अपने धाम में रहकर इन सब चीजों को वो कर ले? तो बीरबल ने कहा कि बादशाह, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर सही समय पर दूंगा। तो एक बार ऐसे हुआ कि राजा अकबर अपने छोटे से पोते को लेकर यमुना नदी में नौका विहार करने के लिए गए और साथ में बीरबल को भी लेकर गए। उनके नौके के साथ साथ उनके उनसे उनको घेर के अनेक नौकाएं थीं, जिनमें कि उनके सेनापति और अन्य सैनिक थे उनकी रक्षा करने के लिए। अकबर और बीरबल दोनों बातचीत में मग्न हो गए और जो बच्चा था अकबर के साथ में वो खेलते खेलते यमुना नदी में गिर पड़ा नौके से। और जैसे ही अकबर ने देखा तो अकबर ने पानी के अंदर छलांग मार दी और बच्चे को बचा लिया। बचाने के बाद जब नौके में लेके आए तो थोड़ी देर बाद बीरबल ने अकबर से पूछा कि बादशाह, आप इतने बड़े राजा हैं, इतने सारे आपके सेनापति और सैनिक हैं, इतनी बड़ा आप बड़ी आपकी प्रजा है, आप इतने ऐश्वर्यशाली और शक्तिशाली हैं, फिर भी जब ये बच्चा पानी में गिर गया तो आप स्वयं क्यों कूद पड़े पानी में? आपने आपके सैनिकों को, सेनापति को, आपके मंत्रियों को क्यों नहीं कहा? आप क्यों स्वयं कूद गए? तो बादशाह अकबर ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि ये तो मेरा पोता है और विशेष प्रेम है मेरा इसके साथ, इसलिए मैंने अपने ही हाथों से उसको बचाया। तो फिर बीरबल ने कहा कि अकबर, बादशाह अकबर, क्या अभी आप समझते हो कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या है? आपका प्रश्न ये था कि हमारे भगवान कृष्ण उनके धाम से यहाँ प्रकट क्यों होते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए? वो अपने धाम में बैठ के क्यों भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते हैं? तो इसका कारण ये है कि भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं। जितने भी जीव यहाँ भौतिक संसार में हैं, वो भगवान को छोड़ के, भगवान से विमुख होके, भगवान को पीठ दिखा के यहाँ स्वतंत्र रूप से भोग करने के लिए आए हैं। इसीलिए तो ये भौतिक सृष्टि की रचना हुई है। परंतु जिस प्रकार से जब एक बच्चा अपने माता पिता को छोड़ के चले जाता है, भले वो अपने माता पिता को भूल भी जाए, परंतु माता पिता बच्चे को नहीं भूलते हैं, ठीक उसी प्रकार यद्यपि हम सब यहाँ भौतिक जगत में आके पैसे और भोग के पीछे लगे हुए हैं जन्म जन्मांतर से, और हम भगवान को भूल चुके हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं, फिर भी भगवान हमको भूले नहीं हैं। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं, वो सदैव हमारे हितैषी हैं। ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भगवान श्री कृष्ण गीता के पांचवे अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त लोकों का, ग्रहों का, ब्रह्मांडों का मालिक या स्वामी मैं हूँ। जितने भी यज्ञ तप आदि यहाँ होते हैं, जितने भी अनुष्ठान होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उनको, उनके फल को भोग करने वाला अधिकारी व्यक्ति मैं ही हूँ। और तीसरी बात कि मैं ही सब प्राणियों का हितैषी हूँ, शुभचिंतक हूँ। इन तीन वस्तुओं को जो व्यक्ति जान लेता है वो परम शांति की प्राप्ति कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक भगवत गीता का है, क्योंकि इसमें सारे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। विश्व शांति का सूत्र है ये श्लोक, कि हमें जान लेना है कि ये सारी संपत्ति भगवान की है, हमारी नहीं है। ये थोड़े समय पहले हमारा जन्म हुआ था, उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं था, थोड़ी देर बाद हमारे हाथ से सब कुछ छीन लिया जाएगा मृत्यु के समय, और खाली हाथ हम चले जाएंगे। केवल एक थोड़े समय के लिए हमारे पास थोड़ा कुछ रह जाता है और उसको हम अपना मानते हैं और हम कहते हैं कि ये मेरा है। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रम है। तो जब हम जान जाते हैं कि भगवान की संपत्ति ये सब कुछ है और ये भगवान की सेवा में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर हम शांत हो जाते हैं। जब अकबर बीरबल की बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना एक और छोटी कहानी बताएं कि एक बार बीरबल ने देखा कि अकबर को थोड़ा घमंड हो गया है, इसलिए बीरबल ने सोचा कि अभी बादशाह को नम्र बनाने के लिए कुछ ज्ञान देना चाहिए। परंतु कैसे ज्ञान दिया जाए? जिस प्रकार से राजा की चेतना है उस प्रकार से हमें कुछ कहना होगा। तो बादशाह अकबर एक बार जब अपने राजमहल के बगीचे में उद्यान में सैर करने के लिए गए, टहलने के लिए निकले शाम के समय, तो वहां उन्होंने देखा कि उनके उद्यान में ही एक फकीर लेटा हुआ है। उसकी लंबी दाढ़ी है और ऐसे ही रास्ते में निरादर करते हुए राजा का वो लेटा हुआ था। तो बादशाह अकबर को गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम कौन हो, ऐसे मेरे रास्ते में क्यों सोए हुए हो? तो उस व्यक्ति ने फिर भी सम्मान नहीं किया राजा का, लेटे लेटे ही ऐसे अनादर करते हुए बात किया कि तुम कौन हो और मैं इस रास्ते से क्यों हटूं? तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं तो राजा हूँ। तो उस फकीर ने पूछा कि अच्छा, तो आप राजा हैं, तो क्या ये सब आपका है? तो राजा ने कहा हाँ, ये सब मेरा है, ये राजमहल आपका है, राजमहल भी मेरा है। तो फकीर ने पूछा कि आपके जन्म के पहले ये राजमहल किसका था? मेरे पिताजी का था। उनके पहले किसका था? उनके पिताजी का था। और आपकी मृत्यु जब हो जाएगी तब ये राजमहल किसका हो जाएगा? मेरे बेटे का हो जाएगा। और उसके बाद किसका होगा? उसके बेटे का होगा। तो ये फकीर जोर जोर से हंसने लगा। अब राजा अकबर तो पहले से ही क्रोधित थे, अब और भी क्रोधित हो गए और बोलने लगे, तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर? तो फिर फकीर ने कहा कि राजा देखिए, ये राजमहल नहीं है, ये तो एक धर्मशाला है। तो राजा ने कहा क्या मतलब? बोला हाँ देखिए, धर्मशाला में क्या होता है, धर्मशाला में एक व्यक्ति आता है, एक दिन दो चार दिन के लिए रहता है, फिर कमरा खाली करके चले जाता है, फिर दूसरा कोई व्यक्ति आता है, वो उस कमरे में रहता है दो चार दिन, फिर वो चले जाता है। ऐसे अनेक लोग आते हैं और जाते हैं और वो धर्मशाला के कमरे वैसे के वैसे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया पहले से है, हमारे जन्म लेने से पहले ये दुनिया है, हमारे मृत्यु के बाद भी ये दुनिया रहेगी और अभी भी ये दुनिया है। तो हमारा इससे क्या संबंध है? क्या हमारा स्वामित्व वास्तविक है? नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पहले भी थी और हमारे बाद में भी रहेंगी। इसलिए ये सारे संपत्ति, ये संसार की सब भगवान कृष्ण की है। और जो भी हम कुछ करते हैं हम उनकी संपत्ति के साथ ही करते हैं, इसलिए हमें इन सब चीजों का प्रयोग भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही करना चाहिए। और साथ साथ भगवान ये भी बताते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, कि वो सारे प्राणियों के सुहृद है। सुहृद का मतलब है कि वो सबके शुभ चिंतक है, हितैषी है। तो इन तीन चीजों को जान लेने से सारे विश्व में शांति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे भगवान की भक्ति करते करते जब हम भगवान को जान जाएंगे, हम ये समझ लेंगे ये सारी संपत्ति भगवान की है और हमारा कर्म कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, तब हमारे हृदय में भी न केवल शांति उत्पन्न होगी बल्कि भक्ति का आनंद उत्पन्न होगा। ये संसार का आनंद आनंद नहीं है, सच्चा आनंद केवल भगवान के संदर्भ में हो सकता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी जो मिथ्या है उसका ज्ञान सर्वप्रथम दिया है। और वो मिथ्या क्या है? वो मिथ्या ये है कि मैं ये शरीर हूँ, और इस मिथ्या का खंडन भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही किया है आत्मज्ञान देके। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हम वास्तव में आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। और आत्मा को शरीर छोड़ के जाना पड़ता है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, दूसरा शरीर छोड़ के तीसरा शरीर, और इस प्रकार से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। वैसे हम रात को सोते समय अनेक बार सपने देखते हैं, परंतु जब सपने से जाग जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि अरे वो तो सपना था, सपने में मैं सोच रहा था कि मैं एक राजा हूँ, या सपने में मैं सोच रहा था कि एक शेर मेरा पीछा कर रहा है। तो जब मैं सोच रहा था कि मैं राजा हूँ मैं बहुत खुश था, जब मैंने ये सपना देखा कि एक शेर मेरा पीछा कर रहा है तो मैं घबरा गया, परंतु जब मैं नींद से जाग गया तो दोनों सुख दुख मिट गए। अब मुझे पता चला कि वास्तव में न तो मैं राजा हूँ और न कोई शेर मेरा पीछा कर रहा है। तो स्वप्न की अवस्था से जागने से हमारे क्षणिक जो सुख दुख होते हैं वो मिट जाते हैं, क्योंकि हम समझ लेते हैं कि ये स्वप्न मात्र थे, तो वो तो रात का सपना है, लेकिन इससे बढ़कर भी एक दिन का सपना है। और वो दिन का सपना क्या है? जब हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ, इस भाषा का हूँ, उस भाषा का हूँ, इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, ये सारी चीजें माया के प्रभाव में, जो भगवान की माया शक्ति है उसके प्रभाव में हर प्राणी सोचता है। परंतु सत्य तो ये है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और इस आत्मा को छोड़ के, इस शरीर को छोड़ के हम दूसरे शरीर को धारण करने वाले हैं। जैसे कि हमने एक पिछले शरीर को छोड़ के इस वर्तमान काल के शरीर को हमने स्वीकार किया है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। जो व्यक्ति इस बात को तत्पर है जान लेता है वो भी शांत रहता है। तो इस भौतिक जीवन में हमें स्वप्न अवस्था, निद्रा की अवस्था और जागृति की अवस्था, इन सब से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। परंतु क्या हमें ज्ञात है कि हमारी जागृत अवस्था में भी हम स्वप्न देख रहे हैं कि ये सब मेरा धन है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा कुटुंब है, ये भी एक स्वप्न है। एक बार एक राजा थे, ये चीन की कहानी है, चीन देश में बहुत साल पहले की बात है, कि एक राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि मैं आपसे थोड़े प्रश्न करना चाहता हूँ, और यदि आपने इन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। तो सारे मंत्री बहुत भयभीत हो गए कि अभी कौन सा प्रश्न पूछने वाले हैं राजा। तो राजा ने उनसे कहा कि मेरा प्रश्न ये है कि कल रात को मैंने एक सपना देखा, और वो स्वप्न था कि मैं एक तितली हूँ, और जब मैंने वो स्वप्न देखा तो वो तितली का जो अनुभव मैंने किया वो मुझे इतना सच्चा लगा कि जागने के बाद मेरे मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ है, और वो ये है कि क्या मैं एक राजा हूं जो स्वप्न देख जिसने स्वप्न देखा कि वो तितली था, या मैं एक तितली हूं जो अभी इस समय स्वप्न देख रही है कि मैं एक राजा हूं। आप समझ रहे हैं इस प्रश्न को, क्योंकि स्वप्न का अनुभव इतना सच्चा लगता है, जब हम स्वप्न का अनुभव कर रहे होते हैं इतना सच्चा लगता है, हमें ये नहीं लगता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। यदि हम स्वप्न देख रहे हैं कि हम राजा हैं तो उस समय हमें पता नहीं चलता कि वास्तव में हम अपने बिस्तर में सोए हुए हैं, हमें ऐसे ही लगता है कि मैं राजा ही हूँ। केवल स्वप्न टूट जाती है तब हमें पता चलता है कि सत्य क्या है, परंतु स्वप्न जब चल रहा होता है तो उस समय वो स्वप्न बहुत सच्चा लगता है। तो राजा को ये तितली का स्वप्न जब हुआ उसको इतना सच्चा लगा ये कि उसने मंत्रियों से ऐसे प्रश्न पूछा। अब मंत्री बड़े आश्चर्यचकित हो गए, भयभीत भी हो गए, अरे ये कैसा विचित्र प्रश्न राजा ने कर दिया। राजा तो अनेक बार तरह तरह के प्रश्न करते हैं जो सेना से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से, राजनीति से संबंधित है, आज राजा ने ऐसे कैसे प्रश्न कर दिया, अब इसका उत्तर कैसे दिया जाए। तो सभी लोग भयभीत हो गए, कोई उत्तर नहीं दे पाए। कल्पना कीजिए कि यदि आप वो मंत्री होते तो आप क्या उत्तर देते, क्या आप कहेंगे कि वो राजा एक राजा है जिसने सपना देखा कि वो तितली था, क्या ये सही है कि वो तितली अभी सपना देख रही है कि मैं राजा हूं, क्योंकि दोनों ही स्वप्न जो है वो सच्चे लगते हैं स्वप्न के दौरान, केवल स्वप्न टूटने पर अंतर समझ में आता है। तो उत्तर तो ये है कि वास्तव में चाहे राजा स्वप्न देख रहा हो तितली होने का, या चाहे तितली हो राजा का स्वप्न देखने का, ये स्वप्न के पीछे स्वप्न है। मूल स्वप्न तो ये है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं, जबकि मेरा ये शरीर से कोई संबंध नहीं है। केवल थोड़े वर्षों तक मैं अर्थात आत्मा इस शरीर के अंदर रहने वाला हूँ, थोड़े वर्षों के बाद इस शरीर को मुझे त्यागना पड़ेगा। प्रकृति के कड़े नियमों के अनुसार मैं इस शरीर में अधिक समय नहीं रह पाऊंगा, न कोई भी प्राणी रह पाएगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम भगवद गीता में यही बताते हैं कि हमारी पहचान क्या है, हमारा परिचय क्या है, कि हम ये आत्मा हैं, हमारे ये भौतिक जगत से वास्तव में कुछ संबंध नहीं है। तो फिर भौतिक जगत को भोग करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं? जैसे एक मछली है, एक मछली को हमने जल से बाहर किया और उसको बहुत अच्छे गाड़ी में, वातानुकूलित एयर कंडीशन गाड़ी में रख दिया, उसको तरह तरह के अच्छे कपड़े दे दिए, खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन दे दिए, अच्छे अच्छे मनोरंजन के लिए टेलीविजन, सिनेमा आदि की व्यवस्था कर दी, इसके बाद भी क्या वो मछली खुश रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि मछली को जब तक पानी में नहीं डाला जाता मछली खुश नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जल ये मछली का स्वाभाविक वातावरण है। आप मछली को जल से बाहर करिए और चाहे दुनिया में जितने भी कोई सुविधाएं हैं, भोग हैं, वो मछली को दें तो मछली खुश नहीं रह सकती। परंतु इन सुविधाओं के बिना भी यदि आप मछली को केवल जल में रखें तो मछली प्रसन्न रहेगी। तो ठीक उसी प्रकार से हम दिव्य हैं, हम अर्थात आत्मा, हम चिन्मय हैं, हम दिव्य हैं, हमारा अस्तित्व है आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय हमारा अस्तित्व है आत्मा का। आत्मा का मृत्यु कभी नहीं होता है, न आत्मा का जन्म होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता भान भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, आत्मा का की कभी मृत्यु नहीं होती है, एक बार होने के बाद फिर आत्मा का अंत कभी नहीं होता है। जब ये शरीर का नाश होता है तो आत्मा का नाश नहीं होता है। तो ये आत्मा केवल थोड़े समय के लिए इस शरीर में है, फिर इसको त्याग के दूसरे शरीर में जाएगा, दूसरे को त्याग के तीसरे से, और ऐसे संसार का चक्र चलते रहता है। इसलिए हमारा गुण धर्म इस भौतिक जगत से पूरी तरह से भिन्न है, हमारा ये भौतिक सृष्टि से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम कभी यह भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकते हैं, और एक ही मार्ग सुख के लिए यही है कि जैसे उस मछली को जल में डाला जाए कि वो उसका स्वाभाविक वातावरण है, ठीक उसी प्रकार से जब तक हम आत्मा को भक्ति के वातावरण में नहीं रखेंगे जो कि उसका स्वाभाविक वातावरण है, तब तक आत्मा सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ये संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत का और आत्मा का गुण धर्म अलग अलग है। इसलिए जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी इस भौतिक सृष्टि का भोग करने में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि इस भौतिक जगत में जीने के लिए हमें संघर्ष तो करना होगा, हमारे पेट के लिए हमें व्यवसाय करना, हमें व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है, परिश्रम करना है, वो तो है, परंतु क्यों ना ईमानदारी का परिश्रम करके जो हमारे भाग्य में लिखा है, जो हमारे कपाल में लिखा है, उससे हम संतुष्ट होके समय बचाएं, मन को शांत रखें, और जो समय और शक्ति हमें मिलती है उससे हम भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति के लिए समय निकालें, यह उचित है हमारे लिए। ऐसे सही बुद्धिमानी का कार्य है कि हाँ, संघर्ष तो सभी को करना पड़ता है, परंतु किसके लिए, किस वस्तु के लिए हम संघर्ष करेंगे, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यदि किसी को पूछें कि आप क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो वो कहेगा भोजन के लिए। आप उसे पूछिए कि आप भोजन क्यों लेना चाहते हैं, तो वो कहेगा जीने के लिए। और यदि आप उसको कहें कि आप क्यों जीना चाहते हैं, तो उसके पास शायद उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में उस व्यक्ति ने सोचा ही नहीं होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों जी रहा हूँ, ये संसार का अर्थ क्या है, इसकी रचना क्यों हुई है। ये सारे प्रश्न पूछने के लिए हमें भगवान ने कृपा करके मनुष्य देह दिया है। मनुष्य देह भगवान की प्राप्ति के लिए है, केवल संसार का भोग करने के लिए नहीं है। संसार का भोग करके शारीरिक सुख प्राप्त करना ये तो पशु पक्षी कीड़े आदि भी करते हैं, तो केवल उतना ही हम भी करें तो हम में और पशुओं में अंतर क्या है। अंतर ये है कि मनुष्य भगवान को जान सकता है, भगवान की भक्ति करके सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य देह प्राप्त करके ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं, और विशेष करके मनुष्य देह भारत भूमि में मिले तो ये और भी दुर्लभ बात है, यह बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि भारतवर्ष में ऐसे आत्माओं को जन्म मिलता है जो बहुत पुण्यवान है, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसे सभ्यता है, और या ऐसे कहना चाहिए कि थी, क्योंकि अभी वो बहुत जल्दी ही बिगड़ती जा रही है ये टेलीविजन सिनेमा आदि के कारण। तो बचपन से ही ऐसी एक सभ्यता या संस्कृति रहती है जो भगवत भावना से युक्त है। हमने देखा कि छोटे बच्चों ने कितने सुंदर तरह से हमें सब भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश कराया, कितना आनंद आप सबको भी आया होगा, हमें तो बहुत आनंद आया इनके नाट्य लीला देखकर। तो ऐसे संस्कार बच्चों को बचपन से ही दिए जाएंगे तो आगे चल के भी उनकी चेतना ऐसी भक्तिमय बन जाएगी, वो अच्छे मनुष्य अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे उसूल अच्छे मूल्यों के व्यक्ति बन जाएंगे। अन्यथा यदि ऐसे भक्तिमय संस्कार हम नहीं देंगे तो आगे चल के फिर वो गलत मार्ग में लग जाएंगे। आजकल दुनिया में हम देख रहे हैं कि कितने दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं, बाहर की दुनिया में इतने झगड़े होते हैं, इतना द्वेष, इतनी घृणा, इतना काम क्रोध लोभ इत्यादि सब जगह दिखाई पड़ रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान को भूल रहे हैं। भगवान कृष्ण को याद करके जब हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमारा चरित्र बदल जाएगा, हमारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा, और हम समझ पाएंगे कि हमें किस लिए जीना है। आजकल हमारे देश में भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ा प्रश्न बना है, सभी लोग इसके बारे में चिंतित हैं, सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उपाय क्या है? इसका कारण पहले हम ये देख लें कि लोगों के हृदय में भगवत भावना बिल्कुल नष्ट हो रही है, इसलिए भगवान को छोड़ के वो जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा हमें धन कमाना चाहिए और संसार का भोग करना चाहिए, यही जीवन की सफलता है, ये इनका जीवन का सूत्र है। और वो सोचते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन सफल, इसलिए हमें ऐसे ही करना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा, जब जो समाज के नेता हैं वही ऐसा करते हैं, हर एक जगह कोने कोने में देश में देखा जा रहा है, तो प्रजा भी उनके पीछे पीछे चलती है, प्रजा भी सोचने लगती है कि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। हमें याद है अनेक साल पहले की बात है, एक दूसरे शहर में हम थे और करीब ये 15-20 साल पहले की बात है, और हमारे आश्रम में टेलीफोन था एक, वो 20 साल पहले मोबाइल फोन आदि नहीं हुआ करते थे इतने, तो एक टेलीफोन था और वो बार बार रोज बिगड़ते जा रहा था। हर बार हम टेलीफोन विभाग से किसी को बुलाते थे तो वो आके उसको ठीक करके फिर से चले जाते थे और उनको हम थोड़ा बख्शीश देते थे। तो ऐसे जब रोज होता गया तो हमारे मन में संदेह आया कि ये रोज क्यों हो रहा है। फिर हमने देखा कि एक व्यक्ति वही कर्मचारी जो है वो जानबूझ के कुछ कर रहा है, तो हमने उसको बुलाया और हमने कहा कि देखो भाई साहब, ऐसा बेईमानी का जो धन होता है वो बहुत भारी पड़ता है, तुम्हें पता है ना, तो बेईमानी से तुम धन कमाओगे, अभी तुमने 100 रुपए कमा लिया तो आगे चल के 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, और वैसे भी मंदिर के विरुद्ध तुम ऐसे करोगे तो और भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उस व्यक्ति का जवाब अभी तक मुझे स्मरण है। उस समय एक मुख्यमंत्री थे उस राज्य में, हम इस राज्य के बाहर थे उस समय, और उनको कोई उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, तो उस कर्मचारी ने कहा टेलीफोन विभाग के कि यदि मुख्यमंत्री ऐसे बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार कर सकते हैं तो हमने थोड़े से पैसे कमा लिए तो हमारी कौन सी बड़ी गलती है। उसने ऐसे हमसे सीधे कह दिया। फिर हमने उनको बिठा के बहुत समझाया और वो चला गया। फिर आगे चल के उसने अपने रास्ते बदल लिए या नहीं हमें पता नहीं। फिर वो किसी दूसरी जगह में चला गया होगा अपनी नौकरी करने के लिए। परंतु समस्या ये है कि राजा अर्थात जो समाज में अग्रणीय लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी ज्ञान नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, न उनके अंदर वो इच्छा है जानने के लिए। तो जब उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका ध्येय ऐसा ही होता है कि हम केवल पैसे कमाएंगे, केवल भोग करेंगे, चाहे भ्रष्टाचार हो या कुछ भी हो, तो सारे समाज में एक नारकीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो सारे समाज को हमें सुधारना है इन विविध प्रकार के कष्टों से। तो हमें कृष्ण भक्ति का पालन करना है, कृष्ण भक्ति को हमारे जीवन में आचरण करना है और इसका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पे करना है। हमारे धर्म ही एकमात्र हमारी रक्षा कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षतः। और यदि हम इस बारे में क्रियाशील नहीं होंगे, यदि हम सोचेंगे कि मेरा छोटा सा जीवन है, मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ, मेरे निजी जीवन में ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, तो सारे दुनिया में कष्ट हो भी रहा हो तो मेरे ऊपर इतना परिणाम नहीं हो रहा है। यदि ऐसे सोचेंगे तो हमें जानना चाहिए कि हमारे ऊपर इतना नहीं हो रहा है तो शीघ्र ही हमारे बच्चों के ऊपर होगा। इसलिए कम से कम हमारे लिए नहीं तो आने वाले पीढ़ियों के लिए तो हमें इस समाज में भक्ति के सिद्धांतों को अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करके इनका पालन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए यहाँ पर आए हैं ऐसे सुंदर संदेश हमको देने के लिए, ताकि हम उनके प्रति आकर्षित हो जाएं। यहाँ पे आज जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव इतने सुंदर ढंग से मनाया गया। मैं सर्वप्रथम यहाँ रथ यात्रा समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने लगन से, इतने हृदय से मेहनत करके इस रथ यात्रा को संपन्न कराया। उनके साथ साथ में अनेक भक्त थे और शुभचिंतक थे जिन्होंने बहुत सेवा की, और इन सब को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ साथ यहाँ के सरकारी शासकीय अधिकारी, व्यक्ति, नगर पालिका, पुलिस, अलग अलग विभाग, उन सब ने भी बहुत सहयोग किया, इसलिए उनके प्रति भी हमारे हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद है। साथ साथ अनेक शहरों से भी भक्त यहाँ पर आए हैं इस रथ यात्रा के महोत्सव के शोभा को बढ़ाने के लिए। उन्होंने काफी कष्ट लेके यहाँ इस शोभा, इस यात्रा को बहुत सफल बनाया है, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ साथ में आप सब जो कारवार के निवासी हैं, आपका मूल्यवान समय निकालकर आप यहाँ इस महोत्सव में शामिल हुए, इसलिए हम आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि महोत्सव तो नगर के प्रजा के साथ ही होता है, आप में से कोई आते ही नहीं तो उत्सव होता ही नहीं, इसलिए आपको भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि कल के दिन भी आप आके यह कार्यक्रम का लाभ लेंगे। और एक छोटा सा कार्यक्रम अब होगा और उसके बाद आरती, आरती के बाद सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो कृपया भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद को पाकर ही आप कृष्णमय भावना से अपने घर में लौटिएगा और अवश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए कल भी यहाँ पे पधारिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
माता जी ने आपके लिए भेंट किया।